نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحيح بخاري پارٹ 2 ہے جہاد کے مسائل یعنی جہاد اور جنگی حالات کے بیان میں پیج 844 پہ حدیث نمبر 1257 1257 سے پڑھیں گے باب ہے ما قیل فی در ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیس فی الحرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اور قمیص کا بیان جو لڑائی میں پہنتے تھے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبۃ کیا کہا یہ آپ کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم یہاں پہ دعا ختم ہوئی فخذ ابو بکر بیدہ فقال حسبک یا رسول اللہ فقد الححت علی ربک وہو فی الدرع فخرج وہو یقول سیخزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر غالباً سورت قمر کی آیات ہے وفی روایت وذالک یوم بدر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں یہ فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما اے اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ بس آپ کو کافی ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے سخت الحاح اور زاری سے دعا کی ہے اب آپ دیکھیں لفظ عربی میں ڈھونڈیں گے نا تو الححت یہ ہے الحاح یعنی رونے میں مبالغہ کرنا شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے اور یہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے کہ ان قریب کفار کی جماعت شکست سے دو چار کی جائے گی اور وہ پیچھے بھاگ جائیں گے بلکہ قیامت کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت سخت اور تلخ چیز ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے تو یہ اللہ کے نبی کا الحاح کیوں تھا کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی بغیر تیاری کے بغیر پلاننگ کے تھی اور اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اگر آج یہ ساتھی مارے گئے تو پھر زمین میں شرک ہی شرک رہے گا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں بے دینی دیکھی جائے تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اگر ہم اس چیز کو ختم نہ کر سکے یا اس کی کوشش نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں پھر سبھی لوگ یہ کام کرنے لگیں تو یہاں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی بات یعنی اس ٹاپک کے ناطے سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور قمیص کون سی ہوتی تھی وہ جس کو لوہے کی قمیص کہتے تھے یعنی خاص لباس ہوتا تھا تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے آگے ہے الحریر فی الحربی لڑائی میں ریشمی لباس پہننا عن انس رضی اللہ عنہ قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبد الرحمن ابن عوف والزبیری فی قمیص من حریر من حقۃ کانت بہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو خارش کی وجہ سے ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی تھی اگلی روایت میں جوؤں کا ذکر ہے دونوں کو ملا لیں تو تطبیق یعنی دونوں کا جمع کرنا کیا ہے کہ پہلے جوئیں پڑی ہوں گی پھر خارش کا حملہ ہوا کہتے ہیں ریشمی لباس جوئیں مار دیتا ہے اور خارش بھی ختم کر دیتا ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ پیور کپڑا پہنتے ہیں پیور کاٹن ہے پیور سلک ہے تو سافٹ بھی ہوتا ہے کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے برعکس سنتھیٹک کپڑے پہنے ہو پسینہ بھی آتا ہے بو بھی آتی ہے بعض دفعہ چھپتے بھی ہیں اور جنگوں میں تو انسان کے اوپر بہت ہی عجیب حالات آتے ہیں تو لہٰذا یہ ایکسیپشنل کیس تھا اب یہاں سے مردوں کا یا دولوں کا شادی میں ریشم پہننا جائز نہیں ہوا یہ مطلب ہے ون خفی روایت انہما شکوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی القمل فارخص لہما فی الحریر حضرت انس ہی سے ایک روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ سے جوؤں کی شکایت کی تو آپ نے انہیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی تھی अगला बाब है मा कीला फी किताले रोम, जंगे रोम के मुतल्लिक जो कहा गया है इसका बयान। अन उम्मे हरामिन रदियल्लाहु अन्हु अन्हा अन्नहा समयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगज़ूनल बहरा قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال الله. देखिए वो कैसे नेकियों के मौके को अपने लिए कैश करवाती थी। हज़रत उम्मे हराम रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना, मेरी उम्मत में सबसे पहले जो लोग बहरी जंग लड़ेंगे। देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में इसकी खबर दे दी, हालांकि आपके अपनी ज़िंदगी में कोई बहरी जंग नहीं हुई। इनके लिए जन्नत वाजिब है। हज़रत उम्मे हराम कहती हैं, मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैं इन्हीं में से हूँ। आपने फरमाया तुम इन्हीं में से हो। उम्मे हराम कहती हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले जो लोग कैसरे रोम के दारुल हकूमत कुस्तनतीनिया पर हमलावर होंगे वो मगफरत याफ्ता हैं। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इन लोगों में से हूँ। आपने फरमाया नहीं। यदि उनकी नेकियों की रगबत देखिए कि जिस जंग का जिक्र सुना तो उसमें खुद को रखा। तो सबसे पहले जिसने कैसरे रोम के दारुल हकूमत पर हमला किया वो यजीद बिन मुआविया था, और इसके साथ इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, इब्ने जुबैर और अबू अय्यूब अल अंसारी जैसे जलीलुल कदर सहाबाए कराम भी थे, और सबसे पहले बहरी जंग लड़ने वाले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो हैं। तो यहाँ से आपको एक खातून का शौके शहादत नजर आता है। क़िताल यहूदी, यहूदियों से लड़ना कैसा है। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तुकातिलून अल यहूदा हत्ता यख्तबिया अहदुहुम वरा अल हजर فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وذكر باقي الحديث. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ اے مسلم یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو. एक और रिवायत में है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों से जंग करोगे। फिर रावी ने बाकी हदीस को जिक्र किया। अब ये सब कब होगा? नज़ूले ईसा के वक्त, क्योंकि तमाम यहूद हजरत ईसा के साथ आएंगे और जो दज्जाल है उस वक़्त उसका साथ देंगे यहूद, और वो एक किस्म का तकाबुल होगा। एक तरफ हजरत ईसा होंगे और दूसरी तरफ दज्जाल होगा। तो हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे तो यहूद को भी फिर नीस्तो नाबूद किया जाएगा, सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। और हज़रत ईसा के दोबारा आने में ये एक हिकमत है कि दुनिया से शर का खात्मा करेंगे। बात है कितालु तुर्की, तुर्कों से जंग करना कैसा है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار العيون حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان مطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. देखिए एक एक चीज ऐसे लगता है आंखों देखी आप बता रहे हैं, और यह आपकी नबूवत की सच्चाई की दलील है कि आने वाले वक्त की खबरें आपने दे दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम तुर्कों से जंग करोगे जिनकी आंखें छोटी छोटी, चेहरे सुर्ख और नाक चपटी होगी, और इनके चेहरे चमड़े चढ़ी ढालों की तरह चौड़े और तह बतह होंगे। नीज क़यामत ना होगी हत्ता कि तुम ऐसे लोगों से जंग करोगे जिनके जूते बालों के होंगे। अब आप देखिए ये सारी सिफात तुर्कों में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के उहद तक तुर्क मुस्लिम नहीं थे, आपको पता ही है। बाद में ये सब कुछ हुआ और आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं ना। आज तुर्की को आप क्या कहते हैं? तुर्क कौन सी मुल्क है? इस्लामिक मुल्क है ना, और बहुत सारे नॉन मुस्लिम मुल्कों के बीच में एक मुस्लिम मुल्क है। और एक अजीब कशमकश का शिकार है। बहरहाल अल्लाह मुसलमानों को बामल कर दे। अद्दुआ अल मुशरिकीन बिल हजीमती व जलजलती, मुशरिकीन को शिकस्त और जलजले से दो चार होने की बददुआ देना। अन अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रदी अल्लाह अन्हुमा काला दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल अहज़ाबी अल मुशरिकीन फ़काला, ये आपके अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबी सरी इल हिसाबी, अल्लाहुम्मा अहज़िमिल अहज़ाब, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने जंग अहज़ाब के दिन मुशरिकीन के लिए ये बददुआ की थी, किताब के नाजिल करने वाले और जल्द हिसाब लेने वाले, ए अल्लाह इन काफिरों को शिकस्त दे, इन्हें हजीमत से दो चार कर, हजीमत क्या होता है शिकस्त, और इनके पांव मैदान से उखाड़ दे। रसूलुल्लाह ने इनकी हलाकत की बददुआ करने की बजाय इन्हें शिकस्त और जलजले से दो चार होने की दुआ की है, क्योंकि शिकस्त के बाद वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, फिर ऐन मुमकिन है कि ये खुद या इनकी औलाद में से कोई मुसलमान हो जाए। तो आप देखिए कि हर कौम के साथ मामला मुख्तलिफ किया गया। अन आयशत रदी अल्लाहु अन्हा अन्नल यहूद दखलू अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कालू अस्सलामु अलैक वलानतुहुम, फ़काला मा लकी कुल्तु अवलम तस्मा मा कालू, قال أولم تسمعي ألم تسمعي ما قلت وعليكم। कितनी प्यारी बात है, अच्छे अखलाक की अलामत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक यहूदी एक दिन रसूलुल्लाह के पास आए और कहा अस्सलाम अलैक, यानी तुम पर मौत आए, तो मैंने इन पर लानत की। आपने फरमाया तुझे क्या हो गया, मैंने कहा इन लोगों ने जो कहा वो आपने नहीं सुना, यानी अल हज़रत आयशा ने सोचा कि शायद नबी सल्लम ने उनके बददुआइया कलेमात नहीं सुने। मैंने कहा इन लोगों ने जो कहा वो आपने नहीं सुना, आपने फरमाया तुमने नहीं सुना जो मैंने कहा, यानी अलैकुम तुम पर ही हो, यानी वही लफ्ज़ जब उन पे कह दिया। और एक रिवायत में यहाँ तक आता है आपने कहा इनके खिलाफ हमारी बददुआ तो कबूल होगी लेकिन हमारे खिलाफ इनकी बददुआ कबूल नहीं होगी। तो जब थोड़ी बात कह के पूरा नतीजा निकल रहा है तो आप अपने ऊपर क्यों बोझ लेते हैं और ज्यादा? तो क्या पता चला कि दुश्मनों पे भी बददुआ करते वक्त ज्यादती से बचना है। अदुआ लिल मुशरिकीन बिल हुदा लियतअल्लफहुम, मुशरिकीन के लिए हिदायत की दुआ करना ताकि इनको मानूस किया जाए। अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहा قدم طفيل بن عمرو الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا اسد وابت فاود الله عليها، فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهد دوسا واتي بهم। इसको भी अपने लिए मिसाल बनाइए। क्या हजरत अबू हुरैरा की रिवायत कि उन्होंने तुफैल बिन अमर और इनके साथी जो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया अल्लाह के रसूल कबीला दौस ने नाफरमानी की और कबूले इस्लाम का इनकार कर दिया, बस आप अल्लाह ताला से इनके मुतल्लिक बददुआ करें। उनका क्या ख्याल था कि बददुआ कर देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने इस्लाम का साथ नहीं दिया। तब कहा गया कि कबीला दौस हलाक हो गया, लेकिन आपने फरमाया ए अल्लाह कबीला दौस को हिदायत फरमा और उन्हें हक की जानिब ले आ। नोट करें, और वाकई आपकी ये दुआ लगी। और कबीला दौस से कौन थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये दुआ आपकी कबूल हो गई। तो कभी भी लोगों को काटे ना, क्या पता वो कल आपसे ज्यादा दीन का काम कर दे। किसी को दीन से दूर दीन के खिलाफ कहीं भी देखें तो दुआ कर दें। बाबू दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल इस्लामी वन नबुवती अल्लाह यत्तखिज़ बादहुम बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को इस्लाम और तस्दीक नबूवत की दावत देना और कहना कि एक दूसरे को अल्लाह के अलावा कोई माबूद न बनाए, यानी ये भी एक तबलीग का खूबसूरत नुक्ता है कि जब दीन की दावत दी जाए तो कॉमन ग्राउंड से बात की जाए। ऐसी बातें शुरू में कर देना कि जिससे दुश्मनियाँ बढ़ें और फिरका वारियत को हवा मिले और लोग पहले ही दूसरे एज पे चले जाएं, तो ये चीज़ फवायद नहीं लाती। देखिए पहले दावत देने वाले को सब्र करना पड़ता है, फिर उसको कोई खैर मिलती है। आज हमारे अंदर सब्र की कमी है और अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे। عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأوتين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فمر فدوي له فبصق عن عينيه فبرى مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يخدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم। कैसे रग़बत दिलाते थे आप। हज़रत सहल बिन साद से ये रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह को खैबर के दिन ये फरमाते हुए सुना कि अब मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। इस पर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस उम्मीद में खड़े हो गए कि इनमें से किस को झंडा मिलता है, यानी उनकी रग़बत इस पर थी कि हमें अल्लाह मौका दे। और दूसरे दिन हर शख्स को यही उम्मीद थी कि झंडा उसे दिया जाएगा। मगर आपने फरमाया कि हज़रत अली कहाँ हैं। कहा गया वो तो आज शोबे चश्म यानी आँख की तकलीफ में मुबतला हैं। आपके हुक्म से इनको बुलाया गया। आपने इनकी दोनों आँखों में अपना लुआबे दाहन लगाया जिससे वो फौरन सेहतयाब हो गए, गोया इनको कोई शिकायत ही न थी। फिर हजरत अली ने कहा हम इन काफिरों से जंग करेंगे यहाँ तक के वो हमारी तरह मुसलमान हो जाएं। आपने फरमाया आराम से चलो, जब तुम इनके मैदान में जाओ तो इन्हें दावत इस्लाम दो और इनके फ़राइज़ से इनको आगाह करो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुर्ख ऊँट कौन थे? अरब का पसंदीदा जानवर और मरगूब सरमाया। हज़रत अली से आपने फरमाया कि अगर इस कदर महबूब सरमाया अल्लाह की राह में सदका कर दे तो भी सवाब को नहीं पा सकता जो किसी आदमी के मुसलमान होने से तुझे मिलेगा। कितनी रग़बत आती इन बातों को सुनकर। अपने लिए भी ये दुआ करें हमेशा कि अल्लाह तो हमारे ज़रिए से दूसरों को हिदायत दे और हमें खुद भी हिदायत पे कायम रखना। दूसरे से फ़ायदा तब होगा जब आप खुद भी फ़ायदा लेंगे।